अभी तक हम सूरत बकरा, सूरत आले इमरान और सूरत निसा और मायद, ये चार मुसलसल मदनी सूरत है, इसीलिए इन्होंने इतना टाइम भी लिया। दुआ करें और बात समझ आ जाए। लेकिन अब इसके बाद सूरत अलनाम मक्की सूरत आ रही है। बिल्कुल आप इसको तरतीब से देखें तो कैसे लगेगा कि जैसे खाने के बाद डिसर्ट लाइट सा लेते हैं, अभी हम वो कहते हैं ना कि फुल मील ले चुके हैं। अब अगर हम चले मिसाल में एक बार भी मौका मिल रहा है तो अगर उससे ऐसे ही गुजर जाए तो बात नहीं बनती। तो इंशाल्लाह सूरत अल अनाम को जब आप सुनेंगे तो आप इनकी आयतों को दिल पे महसूस करेंगे, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा दिमाग पे बोझ देने वाली बातें नहीं होंगी। हम चंद आयतों की तिलावत मिलकर कर लेते हैं। आपको क्या लगता है जिनकी तफसीर होगी वो पढ़ने में मजा आता है या अगली? हो चुकी है ना, पिछला अच्छा लगता है। आप ये पिछला रुकू इनको सुनवा दीजिए, आयत नंबर 116 निकाल लें। चूंकि वो बीच में तिलावत शुरू होती है ना, इसलिए आप सब लोग पहले से औज़ु बिल्लाह मिलके पढ़ लें। जी औज़ु बिल्लाह पढ़िए, सब मिलके पढ़ें। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, शुरू करते हैं। साथ ही सब ऊंची पढ़ा करें और आपको पढ़ने से खुद भी फ्रेशनेस की फीलिंग आएंगी। قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير سورة الأنعام بسم الله الرحمن الرحيم سورت الانعام آخری دور کی سورت ہے مکی سورتوں میں سے اس میں معجزات کا مطالبہ بھی ہے حجت بازیاں بھی ہیں اور ان کے اصرار بھی ہیں کہ آخر ہم پر کوئی ایسی کتاب کیوں نہیں اترتی کہ جس طرح کی کتاب ہم چاہتے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آئی سورت میں مکہ والوں کے مطالبوں پر معجزہ نہ اتار کر ان پر رحم کیا پھر آپ کو اس صورت میں آپ کو ماضی حال اور مستقبل کی کچھ چیزیں دکھیں گی ماضی کے قصے ہم پڑھیں گے تاکہ اس سے سبق لیں حال کے اس لیے پڑھیں گے کہ آج کو استعمال کر کے اس سے بہترین فائدہ لیں اور مستقبل کے قصے اس لیے کہ اس کی تیاری کریں اور حقیقت ہے کہ کل کا ماضی آج کا حال ہے اور اسی طرح آنے والا مستقبل اس سے بعد والے دور کا ماضی ہے زمانے کے مختلف اتار چڑھاؤ ہمیں ان صورتوں میں دکھیں گے اور سب سے بڑی بات ہے کہ جب دل میں اللہ کا خوف نہیں رہتا تو پھر اس قوم کے ساتھ کیا ہوتا ہے بہت کچھ ہے عذاب کن بستیوں پہ آتا ہے کیا ہے بس آپ کہہ لیجئے کہ رونگٹے کھڑے کر دینے والی آیتیں ہیں اللہ تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ کریں گے اللہم لا تہلکنا بعذابک ولا تقتلنا بغضبک وعافنا قبل ذلک کہ اللہ اگر تو کسی جگہ عذاب کا فیصلہ کرے تو ہمیں اس میں نہ مارنا تو کسی کو قتل کرنا چاہے تو ہمیں اس میں نہ کرنا اور جہاں تیری پکڑ آنے لگے تو اس سے پہلے ہمیں وہاں سے نکال دینا بہت سمپل صورت ہے لیکن دل پہ لینے والی صورت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض کیا پتہ چلا صورت فاتحہ کے بعد ایک اور صورت الحمد سے شروع ہو رہی ہے آگے بھی اور صورتیں آئیں گی وہاں آپ دیکھیں گے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے زمین و آسمان بنائے روشنی اور تاریکیاں پیدا کی روشنی کیا ہے توحید کی روشنی اور تاریکیاں کیا ہیں کفر کے اندھیرے اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں اس اسلام کی توفیق دے शिर्क की नफी और नेमतों पर तवज्जो इस सूरत में आपको मुझे बहुत दिखेगा। जिस तरह अल्लाह ने रोशनी और तारीकियां बनाई है ना, इसी तरह हमारे इस वजूद के भी दो हिस्से हैं, एक बाहर का जो हमें मादी सूरत पे दिखता है, ये अंधेरा है। इंसान अपनी असल से मट्टी से बना है ना, हम अंधेरे में हैं, लेकिन जो अंदर हमारी रूह है ना वो रोशन है। जब अंदर की रूह चार्ज हो जाती है तो पूरा वजूद नूरानी बन जाता है। अल्लाह ताला हमारे अंदर इस्लाम और कुरान का नूर भर दे। फिर भी वो लोग जिन्होंने दावते हक को मानने से इनकार कर दिया, दूसरों को अपने रब का हमसर ठहराते हैं, है ना ना समझी की बात। वही है जिसने तुमको मिट्टी से पैदा किया, फिर तुम्हारे लिए जिंदगी की एक मोहलत मुकर्रर की और एक दूसरी मुद्दत और भी है जो इसके हाथ तय शुदा है, मगर तुम लोगों के शक में पड़े हुए हो। शक अमल का दुश्मन है। हम तब तक अमल नहीं करते जब तक हम मशकूक रहते हैं किसी चीज के मामले में। वही एक अल्लाह आसमानों में भी है और जमीन में भी है, तुम्हारे खुले और छुपे सब हाल जानता है। इमेजिन करें कोई ऐसी बात जिसके बारे में मैं कहती हूँ किसी को ना बताना, अल्लाह को उसका भी पता है और खुली बातें भी उसको पता है, और जो बुराई या भलाई तुम कमाते हो इससे भी खूब वाकिफ है। लोगों का हाल ये है कि इनके रब की निशानियों में से कोई निशानी ऐसी नहीं जो इनके सामने आई हो और उन्होंने इससे मुंह ना मोड़ लिया हो, चुनाचे अब जो हक इनके पास आया तो इसे भी उन्होंने झुटला दिया। हम अपने लिए सोचे, हमारे सामने भी तो निशानियां आयतें आई नहीं है ना, तो अपने दिल से दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें इन आयतों को झुटलाने वाला नहीं बल्कि मानने वाला बना दे। अच्छा, जिस चीज का वो अब तक मजाक उड़ाते रहे, अन करीब इसके मुतालिक कुछ खबरें इनको पहुंचेंगी, क्या उन्होंने देखा नहीं कि इनसे पहले कितनी ही ऐसी कौमों को हम हलाक कर चुके जिनका अपने अपने जमाने में दौर दौरा रहा है। कभी मोहनजोदड़ो देखा, हड़प्पा गए, सिंध के देखे रॉइंस, वो भी तो अपने दौर की कौमें ही थी ना, आज वो किधर हैं? तो आज वो नहीं, तो आज जब अल्लाह के अजाब आते हैं तो किधर लोग जाते हैं किसी को कुछ नहीं पता। अल्लाह ने इनको क्यों पकड़ा? फरमाया, इनको हमने जमीन में इक्तदार बख्शा था जो तुम्हें नहीं बख्शा, इन पर हमने आसमान से खूब बारिशें बरसाई, इनके नीचे नहरें बरसा दी, मगर जब उन्होंने कुफराने नेमत किया तो आखिरकार हमने इनके गुनाहों की पादाश में इनको तबाह कर दिया और इनकी जगह दूसरी कौमों को उठाया। क्या अल्लाह इनकी तरक्की से नाराज था? क्या अल्लाह को लोगों का दुनिया में तरक्की करना बुरा लगता है? तो झूठ है, बल्कि क्या कहा, फहलक ना हम भी जुनूबी। इसको हाईलाइट कीजिए, हकीकत यह है कि लोगों के गुनाह पकड़ते हैं। जब अल्लाह किसी कौम को ताकत दे, गलबा दे, दौलत दे, फिर जब कौम अय्याश हो जाए, वहां खराबियां पैदा होने लगे, शिर्क होने लगे, इस तरह की बातें, तो फिर वहां खराबियां थी। आज भी आप देखिए, जहां से खंडरात आप देखेंगे वहां आपको बुत दिखेंगे। सिंध की खंडरात में से बुल निकला, डांसिंग डॉल निकली, और आज भी अफसोस की बात है कि हम पाकिस्तान में रहने वाले भी जब अपने बच्चों के स्कूलों के ट्रिप्स को वहां भेजते हैं तो कोई इबरत नहीं लेता, कभी नहीं कोई सोचता कि ये वो बस्तियां जहां जाब आया था। हम खुद अपने ऊपर लेके सोचते हैं कि स्कूल के साथ कभी गए थे, कुछ नहीं पता था कि बस वहां फन मेला हंस बोल के अपने दोस्तों साथियों के साथ खा पी के वापिस आ गए। अगर टीचर्स अल्लाह से जुड़े होंगे ना तो वो आपको दुनिया की तालीम के साथ भी अल्लाह की मोहब्बत देंगे। और आप देखिए कि आज भी ऐसा है। आपने सुना होगा पोम्पियाई के बारे में, इटली का शहर था, अल्लाह ताला ने उसको दुनिया की कितनी नेमतें थी, लेकिन वहां पहाड़ फटा, माउंट विस्कोस था वो फटा, लावा फटा, इतनी करप्शन आ चुकी थी, वो बिल्कुल एक ऐसे टूरिस्ट सिटी बन चुका था कि ऐन जिना करते हुए लोग लावे के अंदर प्रिजर्व हो गए। कई साल के बाद जब खंडरात खोले तो वो उसी गुनाह की हालत में मौजूद है। तो ये अल्लाह को बुरा लगता है। और ऐसी जो मिसालें अल्लाह ताला क्यों दिखाता है कि जब हम अल्लाह के कानून तोड़ते हैं ना तो अल्लाह ताला अपने कानूनों में से किसी को बदल के उसी को लोगों की तबाही का जरिया बना देते हैं। इसके बाद मुतालबों की बातें, और सूरत अल-अनाम चूंकि मक्का के उस दौर में थी जब अल्लाह के नबी से ये बहुत मुतालबे करते थे, तो फरमाया, पैगंबर अगर हम तुम्हारे ऊपर कोई कागज में लिखी लिखाई किताब भी उतार देते और लोग इसे अपने हाथों से छूकर भी देख लेते, तब भी जिन्होंने हक का इनकार किया वो यही कहते, ये तो खुला जादू है। कहते हैं, इस नबी पर कोई फरिश्ता क्यों नहीं उतरा? अगर कहीं हमने फरिश्ता उतार दिया होता तो अब तक कभी का फैसला हो चुका होता, फिर इन्हें कोई मोहलत ना दी जाती। और अगर हम फरिश्तों को उतारते तब भी इसे इंसानी शक्ल में उतारते और इसी तरह इसी शुबे में इनको मुबतला कर देते जिसमें ये अब मौजूद है। देखिए जो लोग दीन के मामले में संजीदा नहीं होते ना, वो मिरेकल्स मांगते हैं, मोजजा दिखाइए, कोई मोजजा होगा तो मानेंगे। तो कोई नबी का काम कोई मदारी तो नहीं होता, वो कोई आपको तमाशा तो नहीं दिखाने आया। संजीदा लोग किताब पढ़कर अमल की बातें पिक करते हैं, और जिनके माइंड जरा भी फनी से होते हैं ना, वो कहते हैं अच्छा जी कोई इसमें होना चाहिए, कोई वैरायटी प्रोग्राम हो, कोई जरा थोड़ा हंसी बोलना, पान छा लिया, जरा स्माइली करो। ये के मुंह बंद करके 2-3 घंटे बैठे रहे, ये तो बहुत मुश्किल है। तो उस दौर में ऐसे लोग थे जो अल्लाह के नबी की इतनी संजीदा किताब, जो आज हम कमजोर ईमानों के साथ पढ़े तो हमारे दिल पे असर कर रही है, जब अल्लाह का नबी उनके सामने पढ़ता होगा जिसके ऊपर ये किताब उतरी, तो इस किताब की क्या तासीर होती होगी। लेकिन उनके आगे से शोशे देखिए। तो अगर आज आप किसी को कुरान सुनाए वो आगे से उल्टी सीधी बात करे तो डोंट माइंड इट, क्योंकि संजीदगी के साथ ये किताब समझ आती है। लेकिन लोग दीन को भी जब खेल तमाशा बना ले तो दीन की महफिलों में भी बहुत कुछ ऐसा दिखेगा कि जिससे और तो सब कुछ हो जाएगा लेकिन हिदायत नहीं मिलेगी। फरमाया नबी तुमसे पहले भी बहुत से रसूलों का मजाक उड़ाया जा चुका है, मगर इन मजाक उड़ाने वालों पर आखिरकार वही हकीकत मुसल्लत होकर रही जिसका वो मजाक उड़ाते थे। इनसे कहो जरा जमीन में चल फिर कर देखो झुटलाने वालों का अंजाम क्या हुआ, इनसे पूछो आसमान और जमीन में जो कुछ है वो किसका है। हम अपने दिल से पूछें, एक ही आवाज आएगी सब बोलना अल्लाह का, कहो सब कुछ अल्लाह ही का है। अच्छा जिसका सब कुछ हो फिर वो तो बहुत जालिम और बहुत खौफनाक किस्म का होगा, जिसको कहते हैं ना जिसकी लाठी उसकी बहन। दुनिया में जिसकी जितनी बड़ी हुकूमत है लोग उतना ही उससे कांपते हैं। कहा नहीं है सब कुछ मेरा, लेकिन हाईलाइट कीजिएगा, कतबाला नफ्सिहि रहमा, उसने रहमो करम का शेवा अपने ऊपर लाजिम कर लिया, इसीलिए वो नाफरमानी और सरकशियों पर तुम्हें जल्दी नहीं पकड़ लेता। बात समझ आई? आज हम गुनाहों की वजह से क्यों नहीं पकड़े जाते, वो बड़ी जात रहीम है, लेकिन ये नहीं कि वो ऐसे ही रहेगा, क्यामत के रोज वो तुम सबको जरूर जमा करेगा। ये बिल्कुल गैर मुश्तबे हकीकत है। मगर जिन लोगों ने आप अपने आप को खुद तबाही के खतरे में मुबतला कर लिया वो इसको नहीं मानते। रात के अंधेरे और दिन के उजाले में जो कुछ ठहरा हुआ है सब अल्लाह का, अल्लाह की इस ओनरशिप को फील करें तो फिर मरूब होंगे। हम जिसकी चीजों को देखते हैं ना उससे मरूब होते हैं। जब हम फितरत में रहेंगे, नेचर में रहेंगे, खुले आसमान के नीचे हैं, बादल आ रहे हैं, हवा चल रही है, हम कहेंगे सुभान अल्लाह। और आप आर्टिफिशियल दुनिया में रहे, आप कहेंगे वो शंगलियर किसने बनाया, वो रूफ इज सो नाइस, सो कंफर्टेबल कितना है, दिस एंड दैट। तो आर्टिफिशियल दुनिया में रहने वाले लोग मटीरियलिस्टिक हो जाते हैं। इसलिए बच्चों को भी वो ओपन में लेके जाया करें, खुद भी रहे तो आप दिल में अल्लाह ताला की बड़ाई को महसूस करेंगे इंशाअल्लाह ताला। फरमाए अल्लाह का सब कुछ है और वो सब कुछ सुनता और जानता है। को अल्लाह को छोड़कर क्या मैं किसी और को अपना सरपरस्त बना लूं, इस जात को जिस छोड़कर जो जमीन और आसमान का खालिक है, जो रोजी भी देता है रोजी लेता नहीं। मक्का वाले अपने बुतों के आगे खाने रखते थे, प्रसाद खिलाते थे, अल्लाह कहता है मुझे तो तुम नहीं खिलाते, तुम्हें खिलाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। कहो मुझे तो यही हुक्म दिया गया कि सबसे पहले मैं इसके आगे सर तस्लीम खम करूं, और ताकीद की गई है कि कोई शिर्क करता है तो करे, तू बहरहाल मुशरिकों में से ना होना। कहो अगर, ये भी आयत हाईलाइट कीजिए, कभी कोई प्यारा प्यारी, कोई आपकी दोस्त, आपके रिश्तेदार आपको किसी गुनाह पे मजबूर करें, दे विल फोर्स टू डू दिस, लुक एट दिस, कर लो, तो ये आयत याद कर लें। कम अज कम इसका तर्जमा बता दीजिए, कुल इन्नी अखाफ इन असईतु रब्बी अज़ाब यौम नज़ीम, कहो मैं अपने रब की नाफरमानी करूं तो डरता हूं एक बड़े खौफनाक दिन मुझे सजा भुगतनी पड़ेगी। अल्लाह अकबर, सजा का डर गुनाह से लज्जत छीन लेता है। उस दिन जो सजा से बच गए इस पर अल्लाह ने बड़ा रहम किया, और यही नुमाया कामयाबी है। अगर अल्लाह तुम्हें किसी किस्म का नुकसान पहुंचाए तो कोई इसके सिवा नहीं जो तुम्हें इससे बचाए। हम जब किसी की बात को रद्द करते हैं ना तो फिर लोग हमें खौफजदा करते हैं, कहते हैं देखो ये इतनी अल्लाह वाली ना बनो, ये बेटियों के रिश्ते कैसे होंगे, और दूसरों को नजराज कर रही हो, मुश्किल में काम कौन आएगा, और मियाँ नाराज हो गया तो पता नहीं दूसरी बीवी ना ले आए। तो आपको याद याद आ गई, काशी फलो, जब मेरा रब मुझे कोई नुकसान देना चाहे कोई रोक नहीं सकता, और अगर वो खैर देना चाहे तो वो कादिर है, वो अपने बंदों पर कामिल इख्तियार रखता है और दानाओं बाखबर है। इसको अपना क्रीड बनाए, ये मुस्लिम क्रीड है, और ये चीज आपको दूसरों से बेनियाज करेगी। इनसे पूछो کس کی گواہی سب سے بڑھ کر ہے؟ کہو میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے، اور یہ قرآن میری طرف بذریعہ وہی بھیجا گیا تاکہ جس جس کو بھی یہ پہنچے۔ اللہ اکبر، بڑی اہم آیت ہے آپ کے میرے لیے بھی خاص طور پہ، کہ یہ کتاب جس جس کو پہنچے سب کو میں وارن کر دوں، آگاہ کر دوں۔ کیا مجھے اور آپ کو یہ قرآن پہنچ گیا؟ سعید بن جبیر کہتے ہیں جسے قرآن پہنچ گیا گویا کہ اس کی ملاقات نبی پاک سے ہو گئی۔ کیا میں اور آپ اس قربت کو محسوس کرتے ہیں؟ ربیع بن انس کہتے ہیں کہ جسے قرآن پہنچ گیا اس پر میں نذیر ہوں۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اس سے پوچھیں گے کہ اس کو قرآن پہنچ گیا تھا، پھر اس نے عمل کیا کہ کیوں نہیں کیا۔ اللہ اکبر، اللہ ہمارے دلوں میں اس کتاب کو ڈال دے۔ کیا واقعی یہ لوگ شہادت دے سکتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ دوسرے خدا بھی ہیں؟ کہو میں تو اس کی شہادت ہرگز نہیں دے سکتا۔ کہو اللہ تو وہی ایک ہے، میں اس شرک سے قطعی بیزار ہوں جس میں تم مبتلا ہو۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ اس بات کو اس طرح غیر شبہ کے پہچانتے ہیں جیسے ان کو اپنے بیٹوں کو پہچاننے میں کوئی شبہ نہیں آتا۔ آپ میں سے کوئی اپنے بچے کو پہچان سکتی ہیں؟ آپ کہیں گے آپ کا سوال کتنا عجیب ہے، ہاؤ از اٹ پاسبل کہ کیوں میں ضرور پہچانوں گی؟ تو بنی اسرائیل کے اسکالرس اللہ کے نبی کو اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ پہچانتے تھے۔ عبداللہ بن سلام جو پہلے جیو عالم تھے وہ مسلم ہوئے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں جانتے ہمارے اپنے بیٹے بھی اصل میں ہمارے ہیں کہ نہیں، پتہ نہیں اندر کھاتے عورتوں نے کیا خیانتیں کی۔ اتنا بگاڑتا اس دور میں بھی، لیکن ہم اس نبی کو جانتے ہیں کہ یہ وہی نبی ہے جس کا ذکر ہماری کتابوں میں تھا۔ کتنی بدبختی ہے کہ پہچان کر نہ مانے۔ تو کیا آج میں اور آپ مسلمان نہیں پہچانتے؟ سب پہچانتے ہیں، تو پہچان کے مان کتنا رہے ہیں؟ ہم بھی تو اسی کیٹیگری میں آ جائیں گے۔ دیکھیے کسی کے سر پہ سورج چمک رہا ہو اور وہ اندھیروں میں بھٹکے، ہے نا بدبخت۔ چلیے ان کو تو اسلام قبول کرنا تھا، ہم تو مسلم ہیں۔ قیامت کے دن کیسا لگے گا کہ ہیں ہم نبی کے امتی، ہیں ہم مسلمان، نام ہمارا عابدہ اور ماجدہ اور ساجدہ اور سائمہ، سارے اسلامی ریچول، لیکن ہم جہنمیوں کی صف میں کھڑے کر دیے جائیں۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ مگر جنہوں نے خود اپنے آپ کو خود خسارے میں ڈال دیا اور اسے نہیں مانتے، دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں خساروں سے بچا لے۔ وَمَنْ أَسْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹا بہتان لگائے یا اللہ کی نشانیوں کو جھٹلائے؟ یقیناً ایسے ظالم کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ جس روز ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے اور مشرکوں سے پوچھیں گے اب وہ تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریک کہاں ہیں جن کو تم اپنا خدا سمجھتے تھے، تو وہ اس کے سوا کوئی فتنہ نہ اٹھا سکیں گے کہ یہ جھوٹا بیان دیں کہ اے ہمارے آقا تیری قسم ہم ہرگز مشرک نہ تھے، دیکھو اس وقت یہ کس طرح اپنے اوپر جھوٹ گھڑیں گے اور وہاں ان کے سارے بناوٹی معبود گم ہو جائیں گے۔ ان میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو کان لگا کر تمہاری بات سنتے ہیں، یعنی بظاہر بڑے غور سے سنتے ہیں، مگر حال یہ ہے کہ ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال رکھے ہیں جن کی وجہ سے وہ اس کو کچھ نہیں سمجھتے، اور ان کے کانوں میں بوجھ ڈال دیا کہ سب کچھ سننے پر بھی کچھ نہیں سنتے۔ یہ کون لوگ ہیں جو صرف سننے کے، وہ خواہ کوئی نشانی دیکھ لیں اس پر ایمان لا کر نہ دیں گے۔ حد یہ ہے کہ جب وہ تمہارے پاس آ کر تم سے جھگڑتے ہیں تو ان میں سے جن لوگوں نے انکار کا فیصلہ کر لیا وہ تمہاری ساری باتیں سننے کے بعد یہی کہتے ہیں ہاں یہ پہلے لوگوں کی کہانیوں کے سوا اور کچھ نہیں۔ آج بھی کچھ بد نصیب ہیں قرآن سننے کے بعد یہی کہتے ہیں ہاں بھائی یہ تو نبیوں کی باتیں، صحابہ کی، پہلے لوگ تھے، اب آج ہم ایسے کیسے بن سکتے ہیں؟ فرمایا ایسی باتیں وہ غلط کہتے ہیں۔ وہ اس امر حق کو قبول کرنے سے لوگوں کو روکتے ہیں، خود اپنے ان جملوں سے لوگوں کو روک لیتے ہیں، کیا کرنا ہے اس کو پڑھ کے جس پہ عمل نہیں آج کے دور میں ممکن، اور خود بھی دور بھاگتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس حرکت سے وہ تمہارا کچھ بگاڑ رہے ہیں، حالانکہ دراصل وہ خود اپنی تباہی کا سامان کر رہے ہیں مگر انہیں اس کا شعور نہیں۔ اب آپ نوٹ کیجئے گا، سورۃ الانعام میں بار بار آپ کو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی بات دکھے گی۔ ادھر ایسی ایک آیت اور ہمارے سامنے آ گئی کہ کس طرح سے قیامت کے دن ہوگا۔ وَلَوْ تَرَىٰ اِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبُ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اس کو درد کے ساتھ سنیے گا کہ قیامت کے دن لوگ کیا حسرت کریں گے، کاش تم اس وقت کی حالت دیکھ سکتے جب وہ دوزخ کے کنارے کھڑے کیے جائیں گے۔ اس وقت وہ کہیں گے کاش کوئی صورت ایسی ہو کہ ہم دنیا میں پھر واپس بھیجے جائیں۔ آج ہم سب کی طرح دنیا میں، اور ایک وقت آئے گا ہم چاہیں گے کہ ہم ایسا کریں، تو آج توبہ کرنے کی ضرورت ہے نا۔ دیکھیے توبہ ایک ٹائم بونڈ چیک ہوتا ہے، موت کے ساتھ ایکسپائر ہے، آج کریں۔ हदीस में आता है क्यामत के दिन कोई इंसान कदम नहीं हिला सकेगा जब तक पांच बातों का जवाब ना दे दे। पहला सवाल आना उम्री ही फी माफनाओ, उम्र कहाँ गुजारी, वेयर डिड यू स्पेंड योर लाइफ। फिर दूसरा आन शबाब ही फी मा बला हो, जवानी कहाँ पुरानी की। हालांकि जवानी उम्र में आती है लेकिन उसका अलग सवाल क्यों है, क्योंकि मस्तियां भी तो सारी जवानी में होती हैं। फिर तीसरा अन माल मिनई नक तसब, माल कहाँ से कमाया, वट वाज योर सोर्स ऑफ इनकम। और मिनई ना अनफक, खर्च कहाँ किया। और पांचवा मा सामिला बिही मा अल्लमा, जो इल्म हासिल किया उसके ऊपर अमल कितना किया। आज मैं और आप अपने आप को सोचें, देखिए सारे सवाल ओपन बुक में खोल दिए, जैसे कहते हैं ना पेपर आउट हो गया, दुनिया का कोई पेपर आउट हो जाए, पहले से सवाल पता लग जाए तो पेपर कैंसिल होता है। लेकिन आज उम्मत मुस्लिमा का हाल देखिए, सारा पेपर आउट है फिर भी तैयारी नहीं करते। आई एम टू यंग, आई एम ओनली 18, अभी नहीं। कुछ लोग मेंटली अपने आप को आगे जाने ही नहीं देते, वो कहते नहीं जिस दिन हमने मान लिया कि हम बड़े हो गए, 40s 50s में पहुंच रहे हैं तो संजीदा होना पड़ेगा, नहीं नहीं हम यंग रहे बस स्मॉल लगे ताकि हमें अल्लाह ना पूछे। तो याद रखिए कि अल्लाह को तो किसी चीज की परवाह नहीं, लेकिन हमें अपनी फिक्र करनी है। बल बदा लहुम मा कानू युखफूना मिन क़ब्ल, दर हकीकत ये बात महज इस वजह से कहेंगे कि जिस हकीकत पर उन्होंने पर्दा डाल रखा था, लोगों से छुपते थे, उस वक्त वो बेनकाब होकर इनके सामने आ चुकी होगी। वरना अगर इन्हें साबिक जिंदगी की तरफ वापस भेजा जाए फिर वो सब कुछ करेंगे जिससे इनको मना किया गया, वो तो है ही झूठे, इसीलिए अपनी इस ख्वाहिश के इजहार में भी झूठ से काम लेंगे। सच कभी कोई वक्त याद कीजिए, मौत के मुंह से बचे, क्या कहा अल्लाह आज के बाद नेक बन जाऊंगी, बस आज बच जाऊं फिर बच के फिर क्या हुआ। ऐसे अपनी मौत छोड़िए, किसी प्यारे की मौत याद कर लीजिए, उस वक्त क्या दिल में बातें होती हैं, हाय अल्लाह आज के वक्त कुछ अच्छा नहीं लगेगा, बस अब नेक बनूंगी, कुरान पढ़ूंगी। और जरा आप दो तीन दिन किसी को ऐसी बातें करता देखे, बजाय इसके कि लोग खुश हो, कहते नहीं इसको मरी ले जाओ, इसको उधर ले जाओ, इसको कश्मीर ले जाओ, क्योंकि ये तो बहुत डिप्रेस हो गई है। किसी प्यारे की मौत पे दर हकीकत हम हकीकत पसंद होते हैं, ये डिप्रेशन नहीं है, ये रियलिटी है। आज किसी का बच्चा जरा ज्यादा जन्नत जहन्नम के बाहर की बातें करे तो माँ परेशान है। अल्लाह कहते हैं इनको मौका मिल भी जाए तो ये फिर कोई नहीं अच्छे काम करेंगे। आदत है हमारी, वक्त टालते हैं सिर्फ, फिर बाद में वैसे ही हो जाते हैं जैसे पहले से थे। वजह क्या है, वकालु इन हिया इल्ला हयातुना दुनिया वमा नहनु बिमबऊसीन। आज ये लोग कहते हैं जिंदगी जो कुछ भी है बस यही हमारी दुनिया की जिंदगी है। सच लगता है लाइफ स्टाइल से हमें बस जीना इधर है, इसी दुनिया में जियेंगे। एक रिवायत पढ़ी थी कि एक बूढ़ी औरत थी, हजरत ईसा के पास आई और कहने लगी, ईसा मेरे लिए दुआ करो, मेरा एक बेटा 100 साल का होके मर गया, दूसरा सिर्फ 200 साल का होके मर गया, कोई 300 साल का होके मर गया। हजरत ईसा ने कहा, अम्मा तुम खुशकिस्मत हो कि तुम्हारे बच्चों को अल्लाह ने इतनी लंबी उम्रें दी, हमारे बाद एक ऐसी कौम आने वाली है, एक ऐसी उम्मत आने वाली है जिनकी शान तो बहुत है लेकिन उनकी उम्रें बहुत छोटी होंगी। किसकी तरफ इशारा, उम्मत है मुस्लिम उम्मत है। लेकिन अम्मा का जवाब सुन के हैरत होगी, कहा अच्छा इतनी छोटी उम्र इनकी होंगी, फिर तो वो लोग कच्चे घरों में ही रहेंगे, मट्टी के घरों में रहेंगे, कि क्या आप 60-70 साल की उम्र के लिए कोई घर बनाए। आज वो अम्मा दुनिया में आ जाए तो मेरा लिए बेहोशी होते, सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं है। रहें लेकिन दिल ना लगाएं, इसको अपने बच्चों का मुस्तकबिल ना समझे, वो कोई नहीं रहते ऐसे घरों में। ये आपका मेरा प्यार हो सकता है कि ये मैंने बड़े प्यार से घर बनाया, आपकी बहू कुछ अरसा रह के कहेगी मुझे अपना घर चाहिए, मुझे 2 कमरे का फ्लैट दे दो, मैं इतने बड़े हमाल में नहीं रह सकती, ऐसी भी मिसालें देखी गई। तो बस इस दुनिया में रहिए, दिल यहां ना लगाइए, फिर इंशाल्लाह अल्लाह के यहाँ बचत हो सकती है। काश वो मंजर तुम देख सको जब ये अपने रब के सामने खड़े किए जाएंगे। इस वक्त इनका रब इनसे पूछेगा, क्या ये हकीकत नहीं, ये कहेंगे हाँ हमारे रब हकीकत तो यही है। वो फरमाएगा, अच्छा अब अपने इनकार हकीकत की पादाश में अजाब का मजा चखो। आप जहनी तौर पर मैदान हशर में पहुंचे हुए इनायतों के साथ, मुझे तो ऐसी लग रहा है एक से एक कटहरे में लोग आते जा रहे हैं और अपनी जिंदगी की हसरतें पेश कर रहे हैं। कद खसिर अल्लज़ीन कज़्ज़बु बिलिक़ाइल्ला, नुकसान में पड़ गए वो लोग जिन्होंने अल्लाह से अपनी मुलाकात की इत्तला को झूठ करार दिया। जब अचानक वो घड़ी आ जाएगी तो यही लोग कहेंगे, अफसोस हमसे इस मामले में कैसी कमी हो गई। हाईलाइट करें इसको, 3 सेकंड गौर करें, यह आयत झंझोड़ने वाली है। हाय अल्लाह हमने तेरे हक में क्या कमी की। आज भी देख लीजिए सबसे ज्यादा कमी अल्लाह में आती है, तकसीर कमी, लीस्ट प्रायोरिटी अल्लाह का दीन। تو کیا ان کے اسی شرمندہ ہونے سے اللہ ان سے راضی ہو جائیں گے؟ نہیں. فرمایا دیکھو ان کا حال یہ ہوگا کہ اپنی پیٹھوں پر اپنے گناہوں کا بوجھ لادے ہوں گے. دیکھو کیسا برا بوجھ ہے جو یہ اٹھا رہے ہیں. اور دنیا کی زندگی تو ایک کھیل اور تماشا ہے. یہ آیتیں بھی ہائی لائٹ ہوں گی. حقیقت میں آخرت ہی کا مقام ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو نقصان سے بچنا چاہتے ہیں. پھر کیا تم عقل سے کام نہیں لوگے؟ حدیث میں آتا ہے کہ نیک اعمال لوگوں کی سواری ہوں گے قیامت کے دن. یعنی ہم اپنی نیکیوں پہ بیٹھیں گے, ہماری گاڑیاں اور ہمارے موٹر سائیکل اور ہمارے جہاز بن جائیں گے عملوں کی نوعیت سے, اور گناہ ہمارے اوپر سوار ہو جائیں گے. دنیا میں ایسی, اور آپ دیکھیں یہاں لائف کی بات ہے, کھیل تماشا وقتی طور پہ اٹس اوکے, لیکن زندگی کا مقصد نہیں ہے. تھوڑی دیر کا شغل ہے اٹس فائن, لیکن اس کو لے کر چل پڑے تو پھر وہ بات درست نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اسی لیے فرماتے ہیں نبی, قد نعلم انہ لیحزنک الذی یقولون. اے نبی ہمیں معلوم ہے جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں اس سے آپ کو رنج ہوتا ہے. یہاں لفظ یحزن کو ہائی لائٹ کیے. یہ نہیں کہا کہ اے نبی غصہ نہ کریں. پتہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ نہیں آتا تھا, لوگوں پہ دکھ ہوتا تھا. آج بھی ایک سچے داعی دین کی یہی حالت ہونی چاہیے, لوگوں پہ غصہ نہ آئے, ادھر جا کے زہر نہ اگلے, بلکہ درد محسوس کرے, اس کی آواز میں درد ہو, تڑپ ہو کہ ہائے اللہ یہ کیوں نہیں کر رہے. تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں ان کی باتوں پہ دکھی نہیں ہونا چاہیے, لیکن یہ لوگ تمہیں نہیں چھٹلاتے, بلکہ دراصل یہ ظالم اللہ کی آیتوں کا انکار کر رہے ہیں. تم سے پہلے بھی بہت سے رسول جھٹلا چکے ہیں, مگر اس تکذیب پر اور ان اذیتوں پر جن کو پہنچائی گئی انہوں نے صبر کیا, یہاں تک کہ انہیں ہماری مدد پہنچ گئی. آپ ان آیتوں سے امیجن کریں, جب یہ آیتیں اتر رہی تھیں تو اس وقت اللہ کے نبی پر کتنا زیادہ پریشر تھا لوگوں کا. یہاں تک کہ ہماری مدد ان تک پہنچ گئی, اللہ کی باتوں کو بدلنے کی طاقت کسی میں نہیں, اور پچھلے رسولوں کے ساتھ جو کچھ پیش آیا اس کی خبریں تمہیں پہنچ ہی چکی ہیں. تاہم اگر ان لوگوں کی بے رخی تم سے برداشت نہیں ہوتی, تو اگر تم میں کچھ زور ہے تو زمین میں کوئی سرنگ ڈھونڈو یا آسمان میں سیڑھی لگاؤ, اور ان کے پاس کوئی نشانی لانے کی کوشش کرو. اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ہدایت پہ جمع کر سکتا تھا, پھر پارے میں ہدایت آ گئی. لہذا نادان مت بنو, دعوت حق پر لبیک وہی کہتے ہیں جو سنتے ہیں. اس کو ہائی لائٹ کیجیے, اصل بات سننا ہے. سنو تو صحیح. آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں نہیں سنیں گے تو عمل کرنا پڑے گا. تو سنیں گے تو عمل کریں گے, تو نہ سنیں گے تو کیا کریں گے, یہ نہیں پتا کسی کو. تو سننا ہے. اللہ سے قربت کا آغاز سننے سے ہوتا ہے, اور جب کچھ اور زیادہ سننے کو دل کرے تو سمجھ لیجئے کہ ہدایت کے لیے اب دل کھل رہا ہے. پہلا کھانا ہضم ہوتا ہے تو اور لینے کو دل چاہتا ہے, اور اگر پہلا ہضم نہ ہو تو دل نہیں چاہتا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سنو تو صحیح, ان کو بولو کہ تم سنو, اور اسی کی کوشش مجھے اور آپ کو کرنی ہے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے دل میں اتنا حوصلہ اور وصف ڈال دے کہ ہم لوگوں کی بری باتوں پہ صبر کریں. آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی نے کتنے صبر کیے, لیکن بات یہ ہے کہ ہم اپنی ذات کو بڑا کرتے ہیں, اس لیے ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ الجھتے ہیں. تو دوبارہ اس آیت کا حصہ سنیے, دعوت حق پر لبیک وہی لوگ کہتے ہیں جو سننے والے ہیں, رہے مردے تو انہیں تو اللہ بس قبروں ہی سے اٹھائے گا, پھر وہ اس کی عدالت میں پیش ہونے کے لیے واپس لائے جائیں گے. امیجن کیجئے ذرا کیسی بڑی بات. اللہ نے کس کو مردہ کہا ہے؟ جس کے دل میں ہدایت کی طلب نہیں ہے. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے ان ساری باتوں میں ہدایت کو آسان کر دے. مطالبے, معجزے, یہ وہ رہ جاتی باتیں. اگلی آیتیں بالکل وہی ہیں جو ہم پڑھ رہے ہیں, کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس نبی پر ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی. کہو اللہ نشانی اتارنے کی پوری قدرت رکھتا ہے, مگر ان میں سے اکثر لوگ نادانی میں مبتلا ہیں. زمین میں چلنے پھرنے والے کسی جانور اور ہواؤں میں پروں سے اڑنے والے کسی پرندے کو دیکھ لو, یہ سب تمہاری طرح کی مختلف قسمیں ہیں. ہم نے ان کی تقدیر کے نوشتے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی, مگر یہ سب اپنے رب کی طرف سمیٹے جائیں گے. مگر جو لوگ ہماری نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں وہ بہرے اور گونگے ہیں اور تاریکیوں میں پڑے ہوئے ہیں. اللہ جسے چاہتا بھٹکا دیتا ہے اور جسے چاہتا سیدھے راستے پر لگا دیتا ہے. ان سے کہو ذرا غور کر کے بتاؤ, اگر کبھی تم پر اللہ کی طرف سے کوئی بڑی مصیبت آ جاتی یا آخری گھڑی یعنی قیامت آ پہنچتی, تو کہ اس وقت تم اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتے؟ بولو اگر سچے ہو اس وقت تم اللہ ہی کو پکارتے ہو, پھر اگر وہ چاہتا ہے کہ اس مصیبت کو تم پر سے ٹال دے تو ایسے موقع پر تم اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو بھول جاتے ہو. دیکھیے خوشی کے موقع پہ کہتے ہیں انٹرٹینمنٹ چاہیے, کچھ بھی یہ وہ فلاں چیزیں, غم والے گھر میں کیوں نہیں چلاتے؟ जब इंसान दुखी होता है ना, तो उस वक्त उसके ऊपर जो आंखों के ऊपर पर्दे चढ़े होते हैं ना, वो सारे दूर हो जाते हैं। तो अल्लाह ताला से ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारी आंखों पे पड़े हुए पर्दे सारे के सारे उतार दे। यहाँ पे हमारा आज का सबक पूरा हुआ। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। चलते हैं पारा 7 की आयात उम्मत के, उम्मत के मौजू पर जो आयात इसमें आई हैं, उसमें सबसे पहले सूरत मायदा की आयत नंबर 116 है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने और अपनी अम्मी के बारे में परेशान दिखते हैं इस आयत में, और अल्लाह ताला ने उनका ये मामला हमारे सामने खोल दिया। वइस काल अल्लाहु या ईसा इब्न मरियम अअंत कुलत लिन्नास इत्तखिज़ुनी व उम्मी इलाहैनि मिन दूनिल्लाह। और याद करो उस वक्त को जब अल्लाह ताला फरमाएगा कि ईसा इब्ने मरियम के आपने लोगों से कहा था कि अल्लाह के सिवा मुझे और मेरी माँ को माबूद मुकर्रर करो। मेरा ख्याल है कि आज क्रिश्चियनिटी के जितने डिफरेंट क्रीड्स हैं, चाहे वो 3 in 1 है या जीसस को या मरियम के नाते से, सिर्फ इस एक जुमले को अगर हम उनके साथ शेयर कर दें कि देखो तुम मानते हो कि कुरान अल्लाह का कलाम है, ये डिवाइन बुक है, ये वही किताब है, उसी जात का कलाम है जिसने तौरात और इंजील को भेजा, तो इस एक आयत पे गौर करो, इसमें कुछ समझने की जरूरत नहीं। लेकिन आज जो लोग इनको माबूद बनाते हैं, कयामत के दिन हजरत ईसा इस बात पे परेशान होंगे। अल्लाह उनसे पूछेगा बजाय इसके कि उनकी कौमों से पूछे, उस पे भी वो घबरा के कहेंगे काला सुभानका, पाक है मेरे रब तू, मा यकूनुली, ये मेरी कहाँ औकात थी, इट डजंट सूट्स मी, आई कैन डू दिस, क्या अन अकूल मा लैसा ली बी हक्किन, मैं वो बात कहता जिसका मुझे कोई हक नहीं। घबरा गए ना, कहला मैंने तो नहीं ऐसा कुछ कहा कि मेरे बाद मेरी माँ को और मुझे पूजो, इन कुन तो कुल तो फकत अलिमता हो, थोड़ी सी जरा होश आएगी ना, फिर कहेंगे वैसे अल्लाह जी अगर मैंने कहा होता तो आपको खुद भी तो पता होता ही ना, यानी आपको पता है कि मैंने नहीं कहा, तो मैं तो परेशान हो गया हूँ ये बात सुनकर कि मेरे बाद मेरी कौम ने मुझे और मेरी माँ को खुदा या खुदाई में हिस्सेदार बना दिया। तालमु माफी नफसी, तू जानता है जो मेरे नफ्स में है, बोला आलमु माफी नफसी, और मैं बिल्कुल नहीं जानता जो आपके नफ्स में। हजरत ईसा की बेबसी देखिए कि अल्लाह ताला आप दिलों को जानते हैं, आपको गैब का हाल है, मुझे नहीं। इन नकान तल्लामुल गुयूब, आप बेशक गैब की बातों को जानने वाले हैं। तो यह आयत आज मुसलमानों के लिए भी बहुत अहम है। बहुत सारे लोगों ने ईसाइयों की तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात से भी शिर्क वाले काम करने शुरू कर दिए, तो क्यामत का दिन बहुत डिफरेंट है। कुछ लोग सोचते हैं ये बस एक बिग गेट टुगेदर होगा और हम पंखे झलते हुए अपने नामे अमाल के साथ हवा लेते हुए वहां से गुजर जाएंगे, तो मामला बड़ा सख्त है। क्यामत के दिन तंबिये कराम भी खौफजदा होंगे। फिर अगली आज की आयत जो सूरत अल अनाम की आयत नंबर 38 है, वमा मिन दाबतिन फिल अर्दी वला ताइरी यतीरु बिजनाहैही इल्ला उममुन अम्सालुकुम मा फरतना फिल किताबि मिन शैइन थुम्मा इला रब्बिहिम युहशरून। और जमीन में जो चलने फिरने वाले यानी हैवान या दो परों पर उड़ने वाले कोई भी परिंदे हैं, इनकी भी तुम लोगों की तरह जमाते हैं, हमने किताब यानी लोहे महफूज में किसी चीज के लिखने में कोई कोताही नहीं की, फिर सब अपने परवरदिगार की तरफ जमा किए जाएंगे। इस आयत से हमें क्या पता चलता है कि जिस तरह इंसानों की शरीयत है ना, इसी तरह जानवरों और परिंदों की भी शरीयत है। फर्क सिर्फ इतना है कि हमारी शरीयत जो हमें सूरत मायदा में बहुत प्यार से पढ़ाई जा रही है, उस शरीयत को अल्लाह ने पेश किया लेकिन हमें फोर्स नहीं किया। ऐसी जैसे कुरान दे दिया, अब हम पढ़े ना पढ़े, हमें मजबूर नहीं किया, इसकी बुनियाद पर कल क़यामत के दिन फैसले होंगे। इसके बरक्स जो जानवर हैं उनकी शरीयत अल्लाह ने उनके अंदर डाल दी है, जैसे आप कह दीजिए कि इनग्रेव कर दी। मिसाल देती हूँ कि शेर की शरीयत के अंदर सब्जी हराम है, शेर भूख से मर जाएगा लेकिन घास नहीं खाएगा। बकरी की शरीयत में गोश्त हराम है, तो बकरी भूख से मर जाएगी लेकिन गोश्त नहीं खाएगी। तो एक इंसान को सिखाया गया कि देखो एक जानवर जो है वो अल्लाह की शरीयत की नाफरमानी नहीं करता, तो तुम अकल रखने वाले और इतनी चॉइसेस होने वाले, इतना कुछ रखने वाले भी हराम को हलाल और हलाल को हराम क्यों करते हो। फिर उसके बाद सूरत अल अनाम की आयत 42 है, वलकद अरसलना इला उममिन मिन कब्लिका, और हमने आपसे पहले भी बहुत सी उम्मतों की तरफ पैगंबर भेजे, फिर क्या हुआ, फहसनाहुम बिल बासाई वद्दुर्राय लअल्लहुम यतदर्राउन, फिर इन नाफरमानियों के सबब हमने इनको सख्तियों और तकलीफों में पकड़ा ताकि वो आजजी करें। इसमें क्या खबर है कि कौमों पे जब पकड़ आती है किसी भी किस्म की, कोई बीमारी है, तकलीफ है, सख्ती है, तो उसके अंदर अल्लाह सुबहान तआला का मकसद क्या होता है, ये आजजी इख्तियार करें। इसको मैं और आप आज उम्मत मुस्लिमा के नाते से सोचे कि आज हम पे भी कोई बादशाह व दर्रा की कैफियत है। आप कहेंगे कहाँ नहीं है, हर तरफ तो दिखती है। तो ये क्यों है? ताकि हम अपने अंदर आजजी लाए, हम अल्लाह सुबहाना ताला की वो सारी बातें जो उसने हमें सिखाई उस पर गौर करें और देखें कि हमारे किस गुनाह पे अल्लाह ताला हमें दुनिया में जलील और रुस्वा करते हैं। फिर अगली आयत बहुत ही खूबसूरत है, सूरत अल अनाम की आयत 92। वहाज़ा किताबुन अंज़लनाहु मुबारकुम मुसद्दिकुल्लज़ी बैना यदैही वलितुनज़िरा उम्मल क़ुरा। और वैसी ही ये किताब है जिसे हमने नाजिल किया है बाबरकत, जो अपने से पहली किताबों की तस्दीक करती है और जो इसलिए नाजिल की गई कि आप यानी मक्का और उसके आसपास के लोगों को आगाह कर दे, और जो लोग आखरत पर ईमान रखते हैं वो इस किताब पर भी ईमान रखते हैं और वो अपनी नमाजों की पूरी खबर रखते हैं। यहाँ अगर आप आयत को थोड़ा सा गौर से देखें तो उम्मल कुरा मक्का का नाम है जिसमें लफ्ज उम आया है। बहुत ही खूबसूरत रब्त है, जैसे माँ होती है ना तो वो उससे बच्चे पैदा होते हैं और वो बच्चे फिर मुख्तलिफ तरफ चले जाते हैं। इसी तरह याद रखिए कि बस्तियों की माँ मक्का है, और जो काम आज औरत से अल्लाह ने लेना है वो काम कल मक्का कर चुका। कैसे? हुदल लिन्नास, लोगों को हिदायत का पैगाम मक्का से मिला। तो इसको बस्तियों की माँ क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ से हिदायत के सूते फूटे। और दूसरी बात, इस आयत में आप अगर देखें तो कुरान को बाबरकत किताब कहा गया। हम इससे अपने लिए अमल की बात क्या ले सकते हैं? लितुनज़िरा, हमने लोगों को वॉर्न करना है, आगाह करना है। किताबें क्यों नाजिल की जाती हैं? लितुनज़िरा, ये नहीं कि उसको लीत तुखरा ताकि उसको पढ़ा जाए या उससे बरकत ली जाए या उससे वजीफे बनाए जाए, वो साइड इशू हैं। लेकिन असल इशू क्या है कि आप इसको अल्लाह के हुक्म से लें। तो ये हैं वो आयात जिनके अंदर लफ्ज उम्मत का रूट आया है। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हमें सही फहम दे और हम हकीकत के साथ इन चीज़ों को ले चले। अब चलते हैं पारे पे।